तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता, तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, संबंधों का रिश्ता। तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।
ओम शांति। हमारे बीच में आदरणीय दीदी उपस्थित हैं, हम दीदी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और मुस्कुराहट के साथ सुमन दीदी को भेंट करते हैं। दीदी मुस्कुराहट का पुष्प स्वीकार करें। आदरणीय दीदी, मम्मा बाबा की पालना में पले, आपका जन्म मुंबई में हुआ, 1960 में आप ज्ञान में आए और जैसे ही मम्मा बाबा मुंबई जाते थे, आप पहली बार जब बाबा के पास गए तो बाबा ने कहा बच्ची अपने बाप के पास आ गई है, बच्ची को बाप मिल गया। तो वो बाप की पालना, ब्रह्मा बाबा की, शिव बाबा की, बचपन से ही दीदी लेते आ रहे हैं। लौकिक अलौकिक पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बाबा ने आपको देश विदेश की सेवाएं भी करवाई। आप 500 द्वीपों और 80 देशों में बाबा की सेवाएं कर चुके हैं और काठमांडू, नेपाल, बेंगलोर, मुंबई, वहां पर सेवा स्थान खोलने के आप निमित्त बने हैं। और जब बाबा की मुरली चलती है, विदेशी भाई बहने आते हैं, आप इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। दीदी की इंग्लिश और हिंदी मैं दीदी से सुन रही थी कि दीदी विदेश गए तो वहां पर परिचय ही यही दिया जा रहा था, मास्टर वॉइस ऑफ बाबा, माना बाबा की आवाज है दीदी, क्योंकि मुरली जो चलती है दीदी ट्रांसलेट करते हैं। और दूसरे है बात दीदी की जो विशेषता है, रूहानियत, रॉयल चाल, विशाल दिल और हर की पौड़ी, तो बाबा ने आपको टाइटल दिया ही है। आपका व्यक्तित्व इतना शानदार है कि आपके व्यक्तित्व में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, देख करके आपकी रूहानी दृष्टि का आनंद सभी ब्राह्मण लेते हैं। तो आदरणीय दीदी, आज हम सबको इस भट्टी का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है वो स्पष्ट करेंगे, और हमारी जो भी क्वेरीज होंगी दीदी के बोलने से वो ऑटोमेटिक ही स्पष्ट हो जाएंगी। बहुत सारे प्रश्न शांत हो जाते हैं दीदी के वक्तव्य के बाद। तो मैं आदरणीय दीदी से अनुरोध करती हूँ, भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य। मैं ब्रह्मा कुमारी ज्योति पानीपत से बचपन से ही ज्ञान में हूँ, पिछले 32 वर्षों से ईश्वरीय सेवा केंद्र पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। अब बड़ों की दुआओं से बाबा के घर में सेवा का मौका मिला है तो 20 दिन यहाँ सेवा में आई हूँ।
आपकी पूरी भट्टी का जो कोऑर्डिनेशन है आप ही करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, परिवर्तन भूमि में आप सभी फरीदकोट, कुछ लुधियाना से भी आए हैं, कोई दिल्ली से भी आए हैं, एक दो बाकी तो फरीदकोट कनेक्शन के हैं, तो सभी भाई बहनों को मधुबन की तरफ से, प्यारे बाप दादा दादियों की तरफ से और हमारी तरफ से भी आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं समझती हूँ फरीदकोट से पहली बार भट्टी में आए हैं ना जी, पहली बार आए फरीदकोट से, तो
अब आते रहे।
हाँ जरूर जरूर, बहुत अच्छा। मधुबन में आना ये भी एक बड़ा भाग्य है और पांडव भवन में भट्टी करना ये तो और बड़ा भाग्य है। मधुबन में जब से ज्ञान सरोवर शांतिवन बना है तो पांडव भवन में तो कम ही रहना होता होगा। जो भाई बहने पहली बार पांडव भवन में रहेंगे 3-4 दिन वो हाथ उठाएं, देखो सारे ऐसे ही है। जो पहले भी पुराने होंगे, जो पहले पांडव भवन ही था, ज्ञान सरोवर तो बाद में बना, शांतिवन भी बाद में बना, तो जो पुराने हैं और पांडव भवन में भी रहे हैं वो हाथ उठाएं, थोड़े से हैं पांडव भवन। तो जो भाई बहने पिछले 30 साल से ऊपर ज्ञान में चलते हैं वो हाथ उठाएं, 30 साल से ऊपर, हाँ 30 साल से पुराने, जो 25 और 30 साल के बीच में, जो 20 और 25 के बीच में, जो 15 और 20 के बीच में, जो 10 और 15 के बीच में, और जो 10 साल के अंदर, अच्छा कोई 1 साल के भी बच्चे हैं, 1 साल के लास्ट सोफा सोफर जाने वाले हैं 1 साल के, क्योंकि मौका मिल गया भट्टी में आने, हाँ नहीं 2-3 है, एक जो 1 साल वाले, 1-2 साल वाले। हेलो, बहुत अच्छा। आप जैसे ही पांडव भवन पहुंचे आपको ये माला मिल गई, हम इसको कहते विजय माला। ये विजय माला सबके गले में डाली गई, ये बैज भी है तो माला भी है। और इस बैज में लिखत क्या है वो भी आपने पढ़ ली होगी। क्या लिखत है? हाँ जी, तो इसीलिए आप सभी आए हो योग तपस्या करने के लिए। और अंतिम पुरुषार्थ हमारा क्या हो उसके लिए वैराग्य वृत्ति चाहिए। तो वैराग्य वृत्ति और उसके आधार से अंतिम पुरुषार्थ, और उसके लिए इस भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य। तो लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है? उद्देश्य जो होता है वो तो फाइनल होता है, और लक्ष्य जो होता है वो बीच बीच में कई पड़ाव आते हैं। कोई भी चीज बनाते हैं तो उसमें फेजेस आते हैं, भाई पहले फेज में ये मकान बनाएंगे, दूसरे फेज में ये करेंगे, तीसरे फेज में ये करेंगे, फिर फाइनल जो है वो उद्देश्य है। तो ये भी कई पड़ाव है, क्योंकि जब मनुष्य हमसे लोग पूछते हैं आपके इस संस्था का उद्देश्य क्या है, तो हम क्या कहते हैं उनको, क्या उद्देश्य है इस संस्था का? एक वाक्य में, मनुष्य से देवता बनना, सिंपल। लेकिन मनुष्य से देवता बनने के बीच में कई पड़ाव है। ऐसे ही नहीं देवता बन जाते, छू बंतर हुआ और देवता बन गए। कल भी बाबा ने कहा कांटों से फूल बनाने बाबा आए हैं बागवान, तो कांटे से फूल कोई तुरंत तो नहीं बन जाते हैं। ब्राह्मण बनने से पहले भी हम तो शूद्र ही थे, यही कहेंगे, क्योंकि ज्ञान तो कुछ था नहीं, न खुद को पहचानते थे न परमात्मा को पहचानते थे। तीसरा नेत्र ज्ञान का तो ये तो बंद ही था, न तीनों लोकों का ज्ञान न तीनों कालों का ज्ञान। और जब सेंटर पर आए तो पहले कोर्स किया जिसमें ज्ञान मिला हमें, पहले आत्मा का ज्ञान मिला, फिर परमात्मा का ज्ञान मिला, फिर कर्मों का ज्ञान मिला, समय का ज्ञान मिला, फिर योग सिखाया गया कैसे कनेक्शन करो, फिर दिव्य गुणों की धारणा कैसे करनी है, दैवी गुणों पर बताया गया। और जब थोड़ा बहुत तैयार हुए तो फिर कैसे सेवा करो, क्योंकि हमारे चार सब्जेक्ट्स है, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो शूद्र से धीरे 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 ब्राह्मण कैसे बने, फट से तो नहीं बने, क्योंकि जब धारणाएं बताई गई उसमें अन्न की शुद्धि, संग की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि, बहुत सारी बातें शुद्धि की बताई गई, इतनी सारी धारणाएं बताई गई। और धीरे धीरे उन धारणाओं पर अमल करते गए और हम ब्राह्मण कहलाए। तो ब्राह्मण की परिभाषा क्या बताई जाती है? ब्राह्मण वो चार बातें मूल बताते हैं ब्राह्मण के साथ, और भी है। पहले तो ब्राह्मण उसको कहेंगे जो ब्रह्मा भोजन खाए, माना शुद्ध आहार खाए, ब्रह्म भोज। दुनिया में तो ब्रह्म भोज किसको कहते हैं? मालपुरा, पूरी और हलवा, ये पक्का भोजन, उसी को ब्रह्म भोज कई कहते हैं। दाल चावल को ब्रह्म भोज नहीं कहते, लेकिन ब्रह्मा भोजन का मतलब बाबा बताते हैं कि जो ब्रह्मा बाबा को प्रिय है। बाबा को तो बस सादा भाषा भोजन ही प्रिय था। और ब्रह्मा भोजन किसको कहेंगे? शुद्ध शाकाहारी भोजन, परमात्मा की याद में पकाया हुआ, फिर भोग लगाया हुआ और फिर वो हम स्वीकार करें, तो ब्रह्मा भोजन। फिर दूसरा ब्रह्मा के साथ रिलेटेड क्या है, ब्रह्म ज्ञान, जो इतना ऊंचा ज्ञान शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा सत्य ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान का श्रवण करते रहना, जिसको बाबा कहते हैं मुरली। ये हमारे लिए सच्ची खुराक है, ये हमारे लिए मर्यादाएं हैं, हमारे लिए क्या करना है वो संगम युग पर हमारी धारणा ही बाबा की मुरली से ही मिलती है। तो जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्मा ने ग्रहण किया और ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने हम बच्चों को दिया। फिर ब्रह्मा के साथ और रिलेटेड क्या है, ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेले उठना। तो अमृत वेले उठ करके तपस्या करना ब्राह्मणों के लिए ये अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि अगर चार से भी पहले तो बाबा कहते हैं महायोगी है, चलो चार बजे उठे तो योगी है, पर पांच बजे उठे तो फिर तो भक्त हो गए। भक्त भी पांच बजे उठते हैं ना, मंदिरों में जाते हैं। फिर छह बजे उठे तो क्या कहेंगे, भोगी। छह बजे भोगी भी छह बजे तक तो उठ जाते हैं। फिर अगर सात बजे उठे तो रोगी, तो महायोगी से फिर रोगी। तो दुनिया में तो सब रोगी है, बहुत मुश्किल से कोई जल्दी उठते होंगे, बाकी तो छह बजे सात बजे और पांच बजे अधिकतर तो चलो उठ भी जाएंगे भक्त है, और सात के बाद उठे तो, सात के बाद उठे सूर्योदय हो चुका, सूर्य तो हमारी रचना है, और बाबा कहते रचना पहले उठ जाए रचयिता सोया रहे। जैसे बच्चा उठ जाए और मम्मी सोई है और मम्मी को उठाता है, मम्मी उठो तो बच्चे को माँ उठाए या बच्चा माँ को उठाए, कौन उठाए किसको, माँ बच्चे को उठाए। तो सूर्य तो रचना है और हम मास्टर रचयिता, और मास्टर रचयिता हो करके सूर्य उदय हो जाए उसके बाद हम उठे। तो ये तो ऐसे ही हुआ ना कि बच्चा माँ को उठा रहा है। तो सात बजे अगर उठते हैं तो रोगी है, और उसके बाद तो महा महाभोगी महारोगी, उसमें महा महा। तो देखो, तो इसलिए ब्रह्म ज्ञान के साथ फिर ब्रह्म मुहूर्त है, फिर है ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मा ने आचरण किया उस आचरण पर चलना, ब्रह्मा के कदमों पर कदम रखना। तो बाबा कहते हैं ये ब्रह्माचार्य है, ब्रह्मा का आचरण। और फिर हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो आप सुनते हो वो दूसरों को सुनाओ। तो ये भी ब्राह्मणों की विशेषता है, पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना। तो जो खुद करते हैं फिर दूसरों से करवाते भी हैं, है ना, यज्ञ रचते न, तो खुद भी स्वाहा 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 करते, तो फिर जो यजमान होता है उनको से भी कहते स्वाहा करो स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो पढ़ते भी हैं पढ़ाते भी हैं, खुद भी शास्त्र पढ़ेंगे और फिर उसकी डिटेल भी बताएंगे और उसको, और जो उनके यजमान है उनको समझाएंगे भी, फिर वो फिर दूसरों को समझाते हैं। तो ब्राह्मण की बहुत बड़ी परिभाषा है, तो ब्राह्मण बनते हैं। फिर हमें क्या कहा जाता है कि ब्रह्मा बाप के कदमों पर चलना है। तो ब्रह्मा बाप के कदमों पर चलना अर्थात दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो मुझे करना है। मनसा वाचा कर्मणा, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। अगर ब्रह्मा बाबा ये नहीं करेंगे तो मुझे भी नहीं करना है, क्योंकि उनके कदम पर कदम रखना है। संकल्प ही नहीं चलेगा कि करे न करे करे न करे, अगर ब्रह्मा बाबा नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगा। एक बहुत बड़ी धारणा है ये, क्योंकि ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो ब्रह्मा बाप कैसे संपूर्ण बने, कैसे सर्वंश त्याग ब्रह्मा बाबा ने किया, आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, पर उस समय तो चलो भट्टी बननी थी। ब्रह्मा बाबा का जो भी तन मन धन था, जो भी उनकी आमदनी थी या चल अचल संपत्ति जो भी थी, वो सब बहनों माताओं को समर्पित की, वो तो हो गई। और ये यज्ञ शुरू हुआ तो ब्रह्मा बाबा ने जो बीज डाला, उस एक बीज से ये आज वट वृक्ष इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है। बीज तो ब्रह्मा बाबा के तन मन धन से लगा। तो आज हम देख रहे हैं, उस समय तो भट्टी बननी थी तो कई प्रकार के भाई बहने आ गए, क्योंकि नींव रखनी थी, फाउंडेशन था वो। अभी तो वो रूप नहीं है ना, अभी तो विस्तार हो गया। कोई भी मकान बनाते हैं तो जब नींव डालते हैं तो उसमें सोना चांदी तांबा ये सब धातु भी डालते हैं, फिर बहुत सारा अंदर कचरा भी डाल देते हैं ना, भरने के लिए बहुत कुछ भरते हैं उससे। तो शुरू में तो जो भी आए वो सब सरेंडर हो गए, समर्पित हो गए। और उसी समय तीन प्रकार की क्रांतियां हुई, तीन क्रांतियां हुई। पहली क्रांति कौन सी हुई? जो साक्षात्कार हुए, ढेर सारे साक्षात्कार, जो भी आता उनको साक्षात्कार होता था। ये एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, इतनी बड़ी न्यूज हो गई थी जो अमेरिका तक ये न्यूज फैल गई थी कि भारत में कोई एक दादा लेखराज है, उसने उसके पास एक जादू है, जो उसके पास जाता है उनको श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। और बाबा कहते थे ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये शिव बाबा की शक्ति है। तो क्रांति हुई साक्षात्कारों की, कोई भी संस्था में इस प्रकार से कभी नहीं हुआ जो आते ही साक्षात्कार हो जाए। और ब्रह्मा बाबा को तो सबसे पहले साक्षात्कार हुआ, ब्रह्मा बाबा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ सबसे पहले, और विष्णु ने उनको वरदान दिया, तो मेरे जैसे हो, तत्त्वम अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तत्त्वम का वरदान दे दिया, तुम भी मेरे जैसे हो। और विष्णु की तो बाबा भक्ति करते थे, विष्णु के अटूट भक्त थे, इसलिए गीता पाठी थे, पक्के गीता के पाठी थे। रोज सवेरे बिना नागा ना धो करके गीता का पाठ करते थे। कहाँ बैठना है पित भाई जी? माइक के आगे
ठीक
है। अच्छा अच्छा। तो फिर विष्णु का जब साक्षात्कार हुआ तो बाबा को समझ में नहीं आया मैं कैसे इन जैसा हूँ। फिर बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ, और विनाश का साक्षात्कार हुआ तो एकदम वैराग आ गया, ये दुनिया ऐसे खत्म हो जाने वाली है, खत्म हुई कि हुई, लेकिन मुझे क्या करना है ये बाबा को कुछ समझ में नहीं आया, वैराग तो आ गया। फिर बाबा को सत्युग का साक्षात्कार हुआ कि ये दुनिया तुमको बनानी है, स्वर्ग तुमको बनाना है, बड़ा काम दे दिया शिव बाबा ने उनको, पर कैसे बनाना है वो तो बताया नहीं। लेकिन जो वैराग आ गया जिसके कारण बाबा ने अपना सब धंधा सब कुछ त्याग किया, और वो जो साक्षात्कार हुए जिससे सब भागे बाबा के पास, और उनको तो उस समय यही कहा गया कि अगली दिवाली नहीं आएगी, अगली दिवाली नहीं आएगी। अब कितनी दिवालियां हो गई? 88 दिवालियां हो गई ना, 88वां शिवरात्रि मना रहे हैं। लेकिन अगर ये बात नहीं कहते होते तो भागते कहाँ भागते, जो हैदराबाद से कराची रातों रात आ गए, घर में किसी को बताया नहीं, और सवेरे उठे घर वाले, मेरी माँ का है, मेरी बहन का है, मेरी पत्नी का है, इतना तमाशा हो गया था सारा, तो कितनी ग्लानी हुई थी। और ब्रह्मा बाबा कहते थे ये मेरी, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये पहली क्रांति थी साक्षात्कारों की। फिर दूसरी क्रांति कौन सी हुई? दूसरी क्रांति थी कि बहनों माताओं को ही ज्यादा हुआ ये साक्षात्कार, पुरुषों को नहीं हुआ। कोई पुरुष का ऐसा वर्णन नहीं है कि उसको साक्षात्कार हुआ, पर परिवार के परिवार आ गए, परिवार के परिवार। तो बहनें माताएं शक्तियां, और शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि अपनी सारी चल अचल प्रॉपर्टी माताओं के हवाले कर दो। तो 8 बहनों का ग्रुप बना जिसको बाबा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी विल कर दी, वो बीज डाला। तो बहनों माताओं को आगे रखना उस समय समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि समाज में कुछ भी माताओं बहनों के लिए था ही नहीं। सिर्फ पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पुरुषों का ही सारा वर्चस्व था, माताएं तो बेचारी घर में 2-4 दीवारों में बस बच्चों को संभालना उतना ही था, और पुरुष तो सिंध हैदराबाद में वो पुरुष जो थे वो सिंध वर्की कहलाते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते थे सारी दुनिया में, और वो दुनिया घूमते थे और उनकी पत्नियां 4 दीवारों में कैद बस। लेकिन जब शिव बाबा आए तो बहनों माताओं में एक शक्ति आ गई, और कैसे भगवान की बनी तो वो तो इतिहास आपको पता है। तो इसलिए दूसरी क्रांति थी कि बहनों माताओं को आगे किया, और यही कहा कि नारी स्वर्ग का द्वार है, जिनके लिए साधु संन्यासियों ने कहा नारी नर्क का द्वार है, शिव बाबा ने कहा नारी स्वर्ग का द्वार है, ये दूसरी क्रांति। और तीसरी क्रांति कौन सी थी? ब्रह्मचर्य की, पवित्रता की। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ये आदेश दिया कि अब अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है, और जैसे ही शिव बाबा ने यह आदेश दिया ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले पालन किया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा खुद भी तो गृहस्थी थे ना, परिवार वाले थे, बाल बच्चे थे, धंधा धोरी करते थे, बिजनेस में तो ऊपर नीचे बहुत कुछ होता है। लेकिन जैसे शिव बाबा ने उनको पवित्रता की बात कही तो फट से बाबा ने इस आज्ञा का पालन किया, और सब ने यह प्रतिज्ञा की, तो आंदोलन हो गया। इतना बड़ा आंदोलन हैदराबाद सिंध में हुआ, लेकिन कैसे ब्रह्मा बाबा अडिग रहे, अटल अखंड रहे और अडोल रहे, और ये भी पार हो गया, और 14 साल भट्टी बनी भट्टी रहे 1937-38 से 1950 तक, और इन्हीं 13-14 सालों में दुनिया का नक्शा बदल गया। पहले कैसे बदला? दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 तक, 6 साल, और कैसे अमेरिका ने जापान पर बॉम्ब गिराया, एटम बॉम्ब, और जापान ने सरेंडर किया, युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन एटम बॉम्ब का अनुभव किया दुनिया ने, विनाश का पहला स्वरूप। फिर उसके बाद भारत हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, रक्त की नदियां बही, लाखों लोग मारे गए, मानो लाखों, 100,000 नहीं लाखों, अगर विश्व युद्ध में तो करोड़ों भी मारे गए। और फिर उस समय भूकंप भी बहुत आए, ये क्या नाम है, सुनामी भी बहुत आई, बहुत कुछ हुआ, उसमें भी कितने लोग मारे गए, लेकिन दुनिया का नक्शा बदल गया। और फिर ये संस्था कैसे तपस्या करती रही, बाबा ने उनकी रक्षा की। तो ये शुरुआत जो थी वो बहुत ही क्रांतिकारी थी, इसीलिए कई ऐसे नाम बदनाम किया संस्था का, पंजाब में तो बहुत कुछ हुआ, माताएं कैसे, वो उन्होंने भी वो शुरुआत को फॉलो किया, कन्याएं माताएं हमारी चंद्रमणि दादी, इतनी शेरनी शक्ति थी, शेरे पंजाब थी, तो कैसे कितनी बहनें निकली, लीडर हो गई और वो निकली। तो इसीलिए यज्ञ तो आरंभ हो चुका, अब एक बार शुरू हुआ वो बंद थोड़ी होना है, भगवान का कार्य तो बंद होना नहीं है, और दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ता रहा। शुरू में बाबा ने कहा था कि बच्चे साथ रहेंगे और साथ ही जाएंगे, तो सबने क्या समझ लिया कि कोई भी शरीर नहीं छोड़ेगा, सब साथ ही रहेंगे और एक ही जगह रहेंगे, क्योंकि 14 साल तपस्या तो कर रहे थे, साथ रहेंगे और साथ ही जाएंगे, बस तपस्या करके सतयुग आ जाएगा और हम सब वापस परम धाम चले जाएंगे। लेकिन उनको थोड़ी पता था कि इतने साल चलेगा, पर ये तो भगवान की युक्ति थी ना? तो साथ रहेंगे साथ चलेंगे, इसका बहुत भावार्थ कितना सुंदर था कि अंत में कोई भी अपने आप नहीं जाएगा परम धाम। कैसे जाएंगे हम सब साथ में जाएंगे, ब्रह्मा बाबा भी नहीं गए अभी तक। और फिर मम्मा ने शरीर छोड़ा, जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो एडवांस पार्टी का ज्ञान मिला और मम्मा लीडर बनी उस एडवांस पार्टी की। फिर एडवांस पार्टी ये शब्द निकला यज्ञ के अंदर, उसके पहले एडवांस पार्टी का कोई शब्द नहीं था, तो मम्मा उसकी लीडर बनी। फिर तो कैसे धीरे धीरे कई बहनों ने शरीर छोड़ा, फिर तो बाबा स्वयं अव्यक्त हो गए और फिर अव्यक्त बाप दादा की हमें पालना मिली। तो दिन दुगनी रात चौगनी गति से दादी जी और दीदी जी के सानिध्य में ये संस्था कितनी आगे बढ़ गई। और आज हम देख रहे हैं सब दादियां तो एडवांस पार्टी में चली गई, एक रतन मोहिनी दादी थी वो भी चली गए। अब दीदियां हैं तो कई पूछते हैं, कई कहते हैं कि तो आप लोग फिर दादी कहलाएंगे, हम कहते हैं नहीं नहीं दादी नहीं कहलाएंगे, हम सब दीदियां हैं, दादियां तो वही एक ही थी। किसी को ने पूछा कि बड़ी दादी को दादी क्यों कहते थे और अपनी रत्न अपनी मनमोहिनी दीदी को दीदी क्यों कहते थे, तो वास्तव में दीदी दादी ये भी बाबा ने ही कहा और मम्मा शब्द भी बाबा ने ही सबसे पहले ये मम्मा को टाइटल दिया। तो क्योंकि दादी कोई नहीं था, सब बहने थी, दीदी एक अकेली थी, सबसे बुजुर्ग थी ना, और वही दीदी कहलाती थी, बाबा भी उनको दीदी कहते थे। दादी को तो कुमार का बच्ची बाबा कहते, कुमार का प्रकाशमणि पेट नेम था कुमार का। तो प्रकाशमणि दादी खुद भी लिखती थी, बी के प्रकाशमणि, दादी कभी नहीं लिखा दादी जी ने तो, परंतु बाबा ने उनको कैसे दीदी दादी पर हाथ रखा, उनको यज्ञ का रक्षक बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया। और देखो उनकी सानिध्य में ये संस्था विदेशों में गई, विदेशों में सेंटर खोले, फिर दादी जानकी को निमित्त बनाया विदेश की सेवार्थ, और दादी जानकी जिस जिस देश में जाती थी वहाँ वहाँ सेंटर खुल जाता था। तो आज हम देखते हैं कैसे भगवान का ये कार्य चल रहा है, ये मनुष्य का कार्य नहीं है। तो बाबा ने हमें बहुत ऊंचे लक्ष्य दिए, पहले तो ब्राह्मण बनाया, फिर ब्रह्मा बाबा कैसे धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था को पाने लगे, फिर ये लक्ष्य मिला कि ब्राह्मण बनने के बाद फिर हमको इस समय कर्मातीत बनना है। बाबा हर मुरली में कर्मातीत की बात कर रहे हैं, कर्मातीत और संपूर्ण में अंतर है। किसका बज रहा है, अपना मोबाइल सबने स्विच ऑफ रखा है या नहीं? सब स्विच ऑफ रख के अपना मोबाइल, कोई भी मोबाइल की आवाज नहीं आनी चाहिए क्लास में, और ये भी नहीं आना चाहिए यहाँ जो जो ये क्या होता है, ट्रैफिक कंट्रोल भी नहीं बजना चाहिए किसी के भी मोबाइल में, वो भी इसलिए बंद करके आना जब भी क्लास में। ट्रैफिक कंट्रोल आपके मोबाइल में ज़रूरत ही नहीं है, 7:30 का ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, दूसरों के भी ट्रैफिक कंट्रोल बजते रहते हैं 1 मिनट आगे पीछे, ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ सेंटरों पर ठीक है, घर में ठीक है, बाहर ठीक है, पर मधुबन में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए कर्मातीत और संपूर्ण में भी बाबा अंतर बताते हैं। कर्मातीत माना कर्म करते भी कर्म के प्रभाव में नहीं आना, हम कर्म से परे नहीं जा रहे हैं, कर्म तो करना ही है बाबा कहते हैं। ब्राह्मण तो और ही कर्म योगी है, कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना है तो कर्म योगी ही फिर कर्मातीत बनते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा बने। दादियों को भी हमने देखा कैसे धीरे 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 कर्मातीत बनती गई, सब कुछ किया, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा संभाला, लेकिन न्यारे प्यारे भी रहे। अपने निज पुरुषार्थ पर पूरा अटेंशन दिया, ऐसे नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में आए तो अपने ऊपर पुरुषार्थ नहीं किया। अमृत वेला दादी अंत तक हाँ उठती थी, दादी जानकी भी कहती थी मेरे को रोको नहीं, हाँ अमृत वेला मैं जरूर बाबा के कमरे में करूंगी। सब दादियों की ये विशेषता थी क्योंकि बाबा से प्यार है और बाबा कहते अमृत वेले का महत्व है। उस समय बाबा वरदानों से भरते हैं, वही सच्चे योगी की निशानी है। जल्दी रात को सो जाओ, वेस्ट टाइम मत करो। तो इसीलिए कर्मातीत बनना है। ब्रह्मा बाबा को भी यही अंदर में महामंत्र था, मुझे कर्मातीत बनना है। तो सब कुछ किया लेकिन न्यारा प्यारा होकर के किया। अंतिम दिनों में बाबा तो बाबा की मुरलियों में ये आता था, बच्चे तुम्हें टावर ऑफ पीस बनना है, शांति स्तंभ बनना है। शांति स्तंभ बन के सारे विश्व को शांति की किरणें देनी है, तुम्हें प्रकाश स्तंभ बनना है, तो तुम्हें शक्ति स्तंभ बनना है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा की यादगार ये शांति स्तंभ बना। और फिर बाबा कहते कर्मातीत बनते बनते न्यारे प्यारे होते होते संपूर्ण बनना है। तो हमने देखा कैसे दादियां बिल्कुल न्यारी होती गई हमारे सामने। तो दादियों ने चरी छोड़ा है ना, देखा हमने दादियों को कैसे। दादी प्रकाशमणि इतनी एडमिनिस्ट्रेशन में पावरफुल थी लेकिन अंतिम साल दादी का बिल्कुल न्यारा होता गया। दादी से कोई ये पूछना है वो पूछना बुद्धि में आता था लेकिन दादी के सामने जब जाते थे सब कुछ भूल जाता था। सब कुछ माना सब कुछ, पूछना भी है कोई दादी से ये भी भूल जाता था। बस दादी दृष्टि देती थी और दो शब्द बोलती थी, बस उसी में तृप्त हो जाते थे हम। ये कर्मातीत अवस्था दादी जानकी का भी ऐसे, इतनी एकाग्रता दादी जानकी जी की जो बात मत पूछो। परंतु उतनी ही लगन सेवा की भी थी, परंतु कैसे वो भी कर्मातीत होती गई। दादी जानकी का एक मिसाल मैं देती हूँ। दादी जानकी ब्रह्मा कुमारी को इनवाइट किया यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, और उसमें दादी जानकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी तो उनको इनवाइट किया कि आप यूएन में थोड़ा 3 मिनट का भाषण देना है। तो दादी जानकी ने प्रिपेयर तो किया था, बहुत प्रिपेयर किया था इंग्लिश में बोलना है। तो दादी जानकी इंग्लिश भी तो विदेश में जाके सीखी। तो दादी ने भाषण किया 3 मिनट और उसके बाद फिर मधुबन आ गए। तो जब मधुबन आई तो दादी जानकी से मैंने प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न हल्के रूप से, दादी आप वो यूनाइटेड नेशंस में आपने भाषण किया वो थोड़ा अनुभव तो सुनाओ। दादी कहते अनुभव वो तो हो गया, पूरा हो गया। तो वो जयंती से पूछो, मुझे नहीं आता समाचार सुनाना, मुझे समाचार सुनाना आता ही नहीं है, मैं तो बस ज्ञान ही देती हूँ ज्ञान। समाचार क्या सुनाना, यहाँ गई वहाँ गई वहाँ गए कहाँ गए, हमको तो कुछ भी याद नहीं है। मनो इतनी बड़ी सेवा करके आई, लेकिन नहीं तो हम लोग कहेंगे हमने तो यूएन में भाषण किया, कितना बोलेंगे कितना अनाउंस करेंगे। और उसने कहा वो तो मैं तो भूल भी गई। माना जो वो कर्मातीत अवस्था के नजदीक की निशानी है, बिल्कुल एकदम कुछ भी याद नहीं। और एकाग्रता तो इतनी एकाग्रता जो बात मत पूछो, कितनी एकाग्रता। मैं एक दिन दादी जानकी के पास बैठी थी, माना दादी जानकी मुरली पढ़ रही थी, तो मैं दादी के पास जाके बैठ गई। दादी ने ऊपर तक आंख नहीं, माना सिर नीचे ऊपर किया ही नहीं, बस वो मुरली में इतनी मस्ती। और मैं भी देखती रही दादी कितनी मस्ती से मुरली पढ़ रही है, कितनी एकाग्र है, कुछ भी नहीं। दादी तो बीच में पढ़ा, दादी हम थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन मैंने भी नहीं किया, मुझे भी अच्छा लग रहा था। दादी मुरली पढ़ रही, इतने वो मोटे मोटे अक्षर पढ़ रही थी। तो जब मुरली पूरी हुई, पढ़ लिया दादी ने, फिर आँख ऊपर किया, अच्छा शीलू तुम आई हो क्या आदमी, क्योंकि उसने ये भी नहीं देखा कौन आके मेरे पास बैठ गया। इतनी दादी जी की एकाग्रता वो हमने देखी नहीं, तो हम क्या करेंगे, पढ़ भी रहे इधर देख रहे उधर, है ना, देख रहे हैं, लेकिन इतनी एकाग्रता। और अंत में तो कैसे दादी जानकी भी बिल्कुल ऐसी न्यारी हो गई, इतनी न्यारी हो गई जो आत्मा पंछी सहज उड़ गया। कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, कुछ नहीं, बस न्यारे और प्यारे होकर आत्मा उड़ गई, कर्मातीत बन के संपूर्ण बनी। तो कई कहते हैं कि भाई अगर संपूर्ण बनी फिर जन्म लिया, लेकिन बाबा कहते हैं वो तो केवल एक ब्रह्मा बाबा ही है जो संपूर्ण है, जिसने जन्म नहीं लिया, बाकी तो सबने जन्म लिया। अभी हम 18वां ये अव्यक्ति दिवस मनाएंगे 25 अगस्त को दादी जी का, तो अब वही सोच रहे थे अभी वो आत्मा बाबा ने उस ये भोग के संदेशों में कहा था वो लड़का बनी है, क्योंकि दादी जी के अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स बहुत थी। चंद्रमणि दादी भी ऐसा ही थी, ये लड़का बनी है। और कहाँ जन्म लिया है, जो माँ बाप बहुत तरस रहे हैं एक बेटे के लिए, और वो और बड़ी आयु है और उनको बेटा हुआ तो इतना ये लाडला होगा, प्यारा होगा, बाबा का बहुत संदेश आया उसमें। तो अभी हम सोच रहे थे 18 साल की हो जाए, हो जाएगा क्योंकि दादी जी को था कि मैं ब्रह्मा बाप के साथ ही रहूं वतन में, फिर जन्म न लूं, फिर जन्म न लूं। एक बार ऐसे कह भी दिया था, मधुबन निवासी भाई बहनों का क्लास था कि दादी जी से पूछा गया, दादी आपकी कोई इच्छा है? पहले तो पूछा, दादी आपका आपका पुरुषार्थ कैसे चलता है? तो दादी ने दो टुक शब्द में जवाब दिया, 80% सबकी दुआएं और 20% अपना पुरुषार्थ, 80% दुआओं से चल रही हो। फिर एक बार दादी जी से पूछा कि दादी जी आपकी इच्छा क्या है, कोई इच्छा है? तो दादी ने कहा, मुझे कोई इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है। फिर पूछा, नहीं दादी कुछ तो इच्छा होगी, कुछ भी छोटी मोटी कुछ तो होगी इच्छा, चाहे बच्चों के खातिर ही सही, यज्ञ के खातिर कुछ तो इच्छा होगी। तो पता है दादी ने क्या कहा, बस मेरी एक ही इच्छा है कि बाबा अगर मुझे उठाते हैं लेते हैं तो मैं तैयार हूं, लेकिन बाबा के आगे मैं एक बात जरूर रखती हूँ, दादा बाबा आप अगर मुझे बुलाते हो तो मैं तैयार हूँ, पर वापस फिर नहीं भेजना, अपने साथ रखना, अपने साथ रखना। तो फिर 13 दिन तक तो रोज भोग लगा। तो यही था कि दादी जी, अभी दादी जी को बाबा वतन में रखेंगे, लेकिन अंतिम दिन 13वें दिन जैसे बाबा ने दादी को कहा, नहीं सबको जाना है, सबको जाना है, परंतु आपका अलौकिक पार्ट होगा, बहुत बड़ा पार्ट होगा एडवांस पार्टी में, तो इसीलिए जाना तो पड़ेगा। तो दादी को राजी किया उस आत्मा को कि जाना पड़ेगा। तो देखो हर एक को जाना है, परंतु उनका एडवांस पार्टी में कितना बड़ा रोल होगा, सबका अपना अपना रोल है, जगदीश भाई की आत्मा का अपना रोल होगा, निर्वैर भाई भी गए, मनोहर और अपने ये क्या नाम है कौन रमेश भाई भी गए, सब सीनियर्स गए, लेकिन बाबा का कार्य कभी रुकेगा नहीं, भगवान को जो अपना कार्य करना है वो तो रहेगा ही। तो कर्मातीत बनना है हमें, बाबा कहते हैं फॉलो फादर, फॉलो दादीज, ऐसे ही कहेंगे ना, तो यही हमारा लक्ष्य है। तो आगे लक्ष्य बढ़ना है, ब्रह्मा बाप के समान संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बन के संपूर्ण भी बनना है और संपन्न भी बनना है। ये दो शब्द बाबा यूज करते हैं, संपन्न और संपूर्ण में क्या अंतर है? संपन्न माना फुल, फुल, और संपूर्ण माना कंप्लीट, अगर इंग्लिश शब्द यूज करें, फुल माना पूर्ण, संपन्न पूर्ण, और संपूर्ण माना जैसे चंद्रमा होता है ये पूनम की रात, वो संपन्न भी होता है और संपूर्ण भी होता है। संपन्न माना प्रकाश में संपूर्ण, फुल लाइट चंद्रमा की, और संपूर्ण माना आकार में संपूर्ण, फुल, जो बाकी 15 दिन 16 दिन जो है वो फर्क पड़ जाता है ना आकार में, लेकिन पूर्णमासी की रात एकदम गोलाकार और पूरी लाइट के साथ। तो बाबा जब कहते हैं संपन्न मना सर्व गुण संपन्न, हमारी विशेषता क्या हो, कोई भी गुण की कमी न हो, ये है संपूर्ण संपन्न बनना। सर्व गुण संपन्न, फिर 16 कला संपूर्ण, तो कलाओं में संपूर्ण और गुणों में संपन्न। तो संपन्न गुणों में माना कोई भी गुण की कमी नहीं, क्योंकि दो प्रकार के गुण बाबा बताते हैं, एक अनादि गुण और दूसरे आदि गुण, देवताओं के गुण। तो अनादि गुण तो हमारे मूल गुण है ही है, 7 मूल गुण जो बताते हैं, लेकिन उसको उसमें अगर दो गुणों को मिलाए तो एक एक आदि गुण बन जाता है। जैसे 7 रंग होते हैं, तो 7 रंग है ये कोर वैल्यू, कोर कलर्स माना ओरिजिनल जो मूल कलर होते हैं, रंग होते हैं। फिर दो रंगों को मिलाओ तो फिर वो दूसरा रंग बन जाएगा, फिर तीसरा रंग बन जाएगा। 7 सुर होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 से ज्यादा नहीं होता है कुछ भी, जीवन ही 7 दिन का है, 8वां दिन आता ही नहीं आता है। हाँ, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि 7, फिर उसके बाद फिर सोमवार। तो जीवन ही 7 दिन का है, सारा संसार म्यूजिक का वर्ल्ड ही 7 सुरों का है, सारे ग म प ध नी, बस फिर सारे ग म प ध नी सा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सर्व कलाओं में संपूर्ण माना पवित्रता की कलाएं। 16 दिन में वो 16 आना सच वो संपूर्ण कहलाता 100%। तो पवित्रता की कलाएं जहां जो बाबा कहते हैं स्वप्न मात्र भी पवित्रता हमारी भंग न हो, क्योंकि स्वप्न हमारे वश में नहीं है, बाकी तो सब वश में है। क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, ये सब हमारे वश में है। नहीं बोलना है नहीं बोलेंगे, नहीं सोचना है नहीं सोचेंगे, पर नहीं ये स्वप्न आवे वो वश में है। थोड़ा बहुत तो है, कैसे थोड़ा बहुत कैसे है कि ये स्वप्न कभी नहीं आए, किस आधार पर वो स्वप्न नहीं? हाँ, अच्छे सोचो, परंतु स्वप्न में तो कुछ भी आ जाता है, क्योंकि कई पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं जो हमें पता भी नहीं होते और वो संस्कार इमर्ज होते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वप्न मात्र भी नहीं, उसके लिए बाबा हमें परहेज बताते। एक तो अन्न की शुद्धि चाहिए, वो तो है ही है, संग की भी शुद्धि चाहिए, और हर घंटे घंटे अपने ऊपर ध्यान, जो बाबा कहते हैं चार्ट रखो। फिर बाबा कहते हैं रात को कभी भी टीवी ऑन नहीं करना है, टीवी नहीं देखनी है, मोबाइल नहीं चलाना है, बस बाबा को याद करके चलो। लास्ट में कोई नींद नहीं आती है तो मुरली पढ़ के बस वो अंतिम जो मेरा संकल्प हो वो बाबा की याद का हो। तो देखो स्वप्न भी हमारे ऐसे ही आएंगे। मैं कहिए मेरे से पूछते आपको स्वप्न आते हैं, मैं कहती हूँ आते हैं, पर कौन से स्वप्न आते हैं? भाषण करते हुए भाषण कर रही हूँ, किसको कोर्स करा रही हूँ, कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ, मतलब सबको आते हैं स्वप्न, आते हैं ना सबको आते हैं। किसी ये कोई है जिसको कभी स्वप्न नहीं आते हैं? सबको आते हैं, लेकिन कौन से स्वप्न आए? कोई भी विकारी स्वप्न कभी नहीं आए, तो परंतु वो संस्कार अनुसार वो आते हैं। इसलिए संस्कार हमको इतने स्वच्छ पवित्र बनाने हैं जो स्वप्न मात्र भी पवित्रता हमारी भंग न हो, ये बाबा हमें सिखाते। तो उसको हम कहेंगे संपन्न और संपूर्ण। और संपन्न और संपूर्ण बनने के बाद फिर हाँ वतन जाएंगे, वतन जाएंगे फरिश्ता बनेंगे। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता बने, तो फरिश्ता हमारा एक आगे का लक्ष्य है। पहले ब्राह्मण बनने का लक्ष्य था, फिर धीरे धीरे चलो ये अपना ब्राह्मण बन करके फॉलो फादर करने का लक्ष्य था, फिर कर्मातीत बनने का लक्ष्य था, फिर संपन्न और संपूर्ण बनने का लक्ष्य था, और फिर है फरिश्ता बनना। क्योंकि संपन्न संपूर्ण बनेंगे तभी तो फरिश्ता बनेंगे। और फरिश्ता उसको कहेंगे जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, देह न देह न देह की दुनिया का आकर्षण बिल्कुल सब आकर्षणों से परे, कोई इच्छा नहीं। इच्छा शक्ति अगर है तो बस अच्छा बनने की शक्ति, अच्छा बनना ये इच्छा शक्ति है। अच्छा लगता है ये भी, ये अच्छा है, अच्छा लगता है। हाँ बाबा कहते ये भी इच्छा है, बस मुझे क्या करना है, ना किसी को देखना है ना किसी को फॉलो करना है। हर एक आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है, जो करेगा सो पाएगा, मुझे क्या करना है। और उसी से हम फरिश्ता बनते हैं, और फिर फरिश्ता बनने के बाद घर जाना है। और घर क्यों जरूरी है जाना, सीधा सतयुग में नहीं आ सकते, क्यों जरूरी है घर जाना, क्योंकि घर जाना माना फिर से न्यूट्रल बन जाना, जीरो। हाँ जैसे कोई भी मीटर होता है ना, फिर जीरो पर आ जाते हैं, क्योंकि जीरो पर मीटर आया तो पूरा पहले वाला सब खत्म। क्योंकि सतयुग में ये ज्ञान तो नहीं चलेगा, पर ज्ञान की प्रारब्ध जरूर चलेगी। इसीलिए वहां ये ज्ञान नहीं होगा कि हम सतयुग के बाद त्रेता द्वापर कलयुग में जाएंगे। तो परम धाम में उस प्रकार की न्यूट्रलिटी आती है, न्यूट्रल बन जाते हैं, सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल जाता है। और सतयुग में ऐसे आते हैं जैसे कि पता ही नहीं कि कलयुग भी कभी था, कि सब कुछ बदल जाता है, रात और दिन का अंतर बन जाता है, कहाँ रात और कहाँ दिन, कितना फर्क हो जाता है। हाँ दिन में आते हैं तो रात भूल जाती है ना, और रात में आते तो दिन भूल जाता है, ऐसे ही हाल है। तो जब सवेरा होता है बिल्कुल नया दिन नया जीवन ये अनुभव होता है, तो सतयुग में भी ऐसा ही होगा, कलयुग का नाम निशान नहीं होगा। फिर द्वापर में आएंगे तो सतयुग त्रेता का नाम निशान नहीं होगा, वो भी एक अर्ध विनाशी होता है, इसलिए सतयुग त्रेता भूल जाता है सब कुछ, क्योंकि द्वापर कलयुग में आ गए, माया का राज्य शुरू हुआ। तो सतयुग में द्वापर कलयुग भी आना ये पता ही नहीं है, सतयुग में तो हम भूल ये भी भूल जाएंगे कि हम पहले कोई संगम पर थे। तो इसीलिए न्यूट्रलाइज होकर फिर जो प्रारब्ध हमारी है वो आकर के हम सतयुग में भोगेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये चक्र चलता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये मनुष्य से देवता बनना है, तो देवता बनना हमारा उद्देश्य है। तो कहाँ तक पहुँचना है, घर जाना है नई दुनिया में आना है, घर जाना है नई दुनिया में आना है। इसलिए दो नेत्र बाबा ने दिए, ये दो नेत्र में एक एक आँख में मुक्ति दूसरी आँख में जीवन मुक्ति, जहाँ जाना होता है बस उसी को देखना है। बाबा कितने मिसाल देते हैं, पहले जमाने में स्टीमर में जाते थे, तो स्टीमर में जाते थे तो बहुत दिन लगते थे ना, जहाज में हवाई जहाज तो थे नहीं, तो स्टीमर में ट्रैवल करते थे, और जब अपने देश के नज़दीक आते थे तो पता चलता था। अभी आप लोग भी जब आए होंगे ना पंजाब से आए होंगे, तो जब अबू रोड स्टेशन नज़दीक आता है तो एक दीवार आती है ना एक दीवार, और दीवार आ गई मना अबू रोड आ गया, पता चल जाता है अबू रोड आ गया। तो इसीलिए तो सतयुग के नज़ारे बाबा कहते वो देखो, परम धाम को देखो, बस मैं और बाबा और कोई नहीं, और सतयुग के नज़ारे देखो, सतयुग की दुनिया कैसे होगी, उसमें मैं कौन होगा होऊंगा, मैं कौन सा देवता होऊंगा। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते लक्ष्मी नारायण को देखो, लक्ष्मी नारायण को देखो, मुझे ये बनना है। ब्रह्मा बाबा को तो शुरू से नशा चढ़ गया। हाँ बाबा मिसाल देते हैं, हिस्ट्री हॉल में बाबा बैठते थे, वाणी चलाते थे, तो वहाँ लक्ष्मी नारायण का जो ट्रांसलेट है और ऊपर श्री कृष्ण का ट्रांसलेट है, तो बाबा श्री कृष्ण के चित्र को देखकर क्या कहते, मैं बनूंगा, मैं इसे बिचनू बनूंगा, मिचनू छोटा बच्चा तो कृष्ण बनूंगा। तो बाबा खगिया मारते थे, बाबा मुरली में कहते खगिया, खगी किसको कहते बताए, ऐसे 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 छोटा बच्चा करता है ना खगी मारता है, तो वैसे तो वो छोटा बच्चा तो हंसता है और खगिया मारता है तो उसका वो मुंह से लाड़ निकल आती है। तो बाबा भी बस बाबा बाबा कह करके मैं ऐसे बनूंगा, मैं ऐसे बनूंगा। इतना खुशी में झूमते थे, छोटा बच्चा बन जाते थे, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, क्योंकि इनोसेंट थे ना बाबा। बाबा में कोई चलाकी नहीं थी, कोई वो चतुराई जो चलाकी दुनिया की होती है उस प्रकार से तो बाबा की थी नहीं, बेहद थे, सब बाबा के बच्चे थे। और कैसे यज्ञ के अंदर कैसे बाबा ने सारी दृष्टि बदल दी, सबकी दृष्टि बदल दी। लौकिकता की तो बांस थी ही नहीं। कई कहते हैं कि कैसे ये सब बदला, पहले ब्रह्मा बाबा ने बदला। तो कई मिसाल हम देते हैं ब्रह्मा बाबा ने कैसे बदला बाबा की लौकिक युगल। यो युगल बाबा को बाबा कहने लगी, पत्नी अपने पति को पिता कहे, बताओ। तो किसी ने मेरे से पूछा किसको ज्यादा मेहनत लगी होगी, यशोदा जो बाबा की युगल थी उसको बाबा कहने में मेहनत लगी होगी, या बाबा को यशोदा बच्ची कहने में मेहनत लगी, क्योंकि बाबा सबको बच्ची कहते थे। बाबा के लिए सब बच्चे थे, जानवर भी बच्चे थे, पक्षी भी बच्चे थे। बताते ना कि एक रोज 11 बजे बाबा झोपड़ी में बैठते थे, तो बाबा को चने वगैरह कुछ जूस वगैरह देते थे। तो रोज एक वो आती थी, ये क्या नाइटिंगेल क्या बोलते हैं, कोयल आती थी या वो, तो वो बुलबुल आती थी, तो रोज बुलबुल आती थी और बाबा उनके लिए वो छोटे छोटे दाने जो चने के होते ना वो निकाल के रखते थे, तो बाबा के हाथ से वो खाती थी। तो एक दिन वो नहीं आई, तो बाबा ने कहा आज बच्ची क्यों नहीं आई है। तो सबने पूछा बाबा कौन सी बच्ची कौन सी बच्ची, तो बाबा ने कहा वो बुलबुल बच्ची। हाँ, तो कहा बुलबुल बच्ची नहीं आई है। और सचमुच वो पता नहीं वो ही बुलबुल होगी या क्या। और जब बाबा अव्यक्त हुए और भोग लगा अंतिम संस्कार के बाद, तो भोग लगा, तो भोग का जो टेबल था मतलब भोग का कवर था, तो वो बुलबुल पहुंच गई। और वो बुलबुल वो भोग के जो वो ट्राली पर चक्कर लगा रही थी और फिर उड़ गई, फिर नहीं आई। बस बाबा का भोग स्वीकार कर लिया उसने, मतलब बाबा के आगे तो सब बच्चे ही थे। तो बाबा तो किसको ज्यादा मेहनत लगी होगी, संबंध बदलने में किसको ज्यादा मेहनत लगी होगी, यशोदा को या ब्रह्मा बाबा को, यशोदा को। पर फिर भी इतना सहज था, मम्मा और मम्मा की माँ, माँ बेटी दोनों साथ में आई, तो बाबा ने मम्मा कहा तो सबने मम्मा कहना शुरू किया। तो बाबा की लौकिक माँ ने भी मम्मा को मम्मा कहा, तो माँ बेटी को मम्मा माँ कहे और बेटी माँ को बेटी कहे देखो ये सब संबंधों का कितना अंतर हो गया। विश्व किशोर भाव थे और ये संतरी दादी थी, संतरी दादी युगल थे, बना विश्व किशोर भाव, लेकिन कभी किसी को कभी संकल्प भी नहीं आएगा ये युगल होंगे, क्योंकि वो बिल्कुल न्यारे प्यारे थे, ऐसे उनकी अनुभूति थी। तो ये है यज्ञ की कमाल, जो बाबा ने इतना पावरफुल ये यज्ञ रचा, फाउंडेशन रचा, जो दिन दुगनी रात चौगनी गति से कैसे बाबा का कार्य चल रहा है। ये इंसान का कार्य नहीं है, इतनी सब बहनें समर्पित हो रही, इतनी सब कहां से कैसे समर्पित हो रही, किसको देख करके, शिव बाबा को। कई कहते हैं ना आप लोग भगाते हो, तो अभी तो ये तो सब बंद हो गया, बंद हो गया या अभी भी है पंजाब में, अभी कोई कहते हैं क्या, अभी कोई नहीं कहता। और आजकल तो ये भी नहीं कि कोई बंधन में डाले, कोई यहाँ है बांधेली, कोई है जो छिप छिप कर आई है जो किसी को बताया ना हो घर में, सपने बताया, कोई अभी बंधन भी नहीं। आजकल समय बदल गया है, हमारी बहनें कोई कम शक्तियां थोड़ी है शिव शक्ति अवतार है ना। और भाइयों को यही कहते हैं ना, बहनों को रिस्पेक्ट दो, हर कार्य में बहनों को आगे रखो तो आपको सफलता है ना। भाई लोग क्या सोचते हैं मैं हूं नहीं, इसीलिए सन्यासी भी झुकते हैं, सचमुच सन्यासी भी कहते हैं आपकी संस्था इतनी आगे क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने बहुत अच्छा काम किया, बहनों को आगे रखा। एक बार मैं मिसाल देती हूँ, एक कहीं शुरू में बात है, कहीं गए थे एग्जीबिशन लगाने, तो वहाँ आर्य समाजी बहुत आए थे, तो आर्य समाजियों ने बहुत ही तंग किया, बहुत मतलब जलाया, ये बहुत सब कुछ किया। तो एक भाई उनके सामने पहुंच गया, अरे भाई तो क्या गया, उसको तो मारने लगे। फिर वो भाई तो डर के मारे वापस आ गया। फिर बहन गई, और जैसे बहन गई तो सब शांत हो गए, सब शांत हो गए। तो भाइयों ने कहा कि इस भाई को क्यों भेजा, आप बहने क्यों नहीं आई, क्योंकि बहने जाती तो बहनों के आगे इतना तंग नहीं करते, मतलब कुछ भी नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। पर तो भाई गया तो भाई भाई से झगड़ा करेगा, हाँ झगड़ा करेंगे ना। हमने देखा कई बातों में, हम यहाँ शिविर कराते थे तो शिविर में रात्रि क्लास में प्रश्न उत्तर का सेशन चलता था। तो एक बार वो शिविर में मीडिया वाले आए थे शिविर करने के लिए, तो रात्रि प्रश्न उत्तर था, तो हमने एक भाई को भेजा, कुछ काम था हमें, तो हमने एक भाई को भेजा, सीनियर भाई था, बहुत इंटेलिजेंट भाई, और उसको हमने कहा कि प्रश्न उत्तर है, आप क्लास कराना। अभी क्लास कराने क्या बैठा, वो मीडिया वाले होशियार, बहुत तेज बुद्धि के, और वो भाई भी बहुत तेज बुद्धि का, तो आपस में डिबेट हो गई, इतना आवाज जोर जोर से, वो भी बोले, और जिसको क्लास के लिए दिया। तो मुझे किसी ने कहा बहन जी वहां तो झगड़ा हो गया है क्लास में, तो मैं गई, तो हम गए, और फिर मैं तो मुस्कुराई और प्यार से सबसे बात की। और फिर उसके बाद एक मीडिया वाला पूछता है, बहन जी आप क्यों नहीं पहले आए, आप क्यों नहीं पहले आए, भाई को क्यों भेजा, आप आते तो हम ऐसा नहीं करते। तो हमने रियलाइज किया कि देखो बाबा ने बहुत समझदारी से बहनों को आगे रखा। अभी हम देखते हैं हमारे कई भाई कहीं भी सेवा जाते हैं, अकेले भाई नहीं जाते, बहन को जरूर साथ ले जाते, तब सफलता मिलती है। तो इसीलिए भाइयों को भी यही शिक्षा बाबा देते ना, बहनों को आगे रखो। तो देखो हर कार्य आपका सफल होगा, और ये स्थापना का कार्य तो पूरा होना ही है, आखिर सबको घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। तो इसीलिए अंतिम पुरुषार्थ हमारा क्या हो, उसके लिए की सारी क्लासेस होगी। अंतिम पुरुषार्थ, समय बहुत नजदीक है, कल भी बाबा ने कहा समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो, समय को समीप लाना है। समय कौन सा विनाश कब होगा ये नहीं पूछो, समय को आपको समीप लाना है, वो आपका इंतजार कर रहा है। एडवांस पार्टी वाले भी एडवांस या इंतजार कर रहे, प्रकृति भी इंतजार कर रही है, मेरे जो भविष्य में महाराजा महारानी बनने वाले वो कहाँ तक संपन्न और संपूर्ण बने, तो यही लक्ष्य लेके जाना है ना इस भट्टी से, लक्ष्य भी है और उद्देश्य भी है। ठीक है, चलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारे बीच ये मधुरवाणी ग्रुप पहुंच गया है, पहले तो हम तीन बाबा की याद में बैठे।
ओम शांति। सबसे पहले आपका स्वागत मौसम ने किया, बड़ा प्यारा सा मौसम, फाग में फरिश्ते दिखाई पड़ रहे हैं, बादलों के बीच में आप सब फरिश्ते दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ही सुंदर सा अवसर, रक्षाबंधन के दिन बाबा मम्मा की पालना पाए हुए दीदियां अमृत पाल डाल रही हैं, और बड़े स्नेह से ये कोट कपूरा फरीदकोट इस फैमिली को संभाल रही हैं। आप सबका बहुत बहुत सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है, एक बार जोरदार ताली बजा के।
मेरा बाबा मीठा बाबा।
एक मिनट, हमारे साथी हमारे हल्दर भाई अभी सुना रहे हैं आपको, आप हॉस्पिटल में सेवा प्रदान कर रहे हैं, ओटी में माना ऑपरेशन थिएटर में, सारा दिन बड़ी गजब की सेवा है, वहाँ व्यस्त होते हुए भी समय निकाल के, बहुत अच्छी गायकी है, बहुत अच्छे संगीत बनाते हैं, गाते भी हैं और धुने भी बनाते हैं, तो एक बार हल्दर भाई के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन कर लें। और हमारे निरंजन भाई आप किचन में वहाँ की सेवा करते हैं हॉस्पिटल में, और दोनों भाई मिल करके बहुत अच्छा हमारा साथ भी देते हैं, और आपके स्वागत के लिए आए हैं, तो निरंजन भाई के लिए जय हो।
मेरा बाबा मीठा बाबा कहता फरीदकोट, मधुबन मोहन भट्टी में आकर खुशियों से लोट पोट। मेरा बाबा मीठा बाबा कहता फरीदकोट, प्रेम दीदी संगीता दीदी प्रेम सुधा पिलाती है, ज्योति दीदी आत्म ज्योति हरदम सबकी जगाती है।
क्या बात,
झूठा तालियां हो जाए उनके लिए।
तालियां बजा के सहयोग दे सकते हैं।
चहक रहा है फरीदकोट, चहक रहा है फरीदकोट, महक रहा मधुबन आंगन, दिवस मिला मंगल पावन, दृश्य बड़ा है मन भावन, हरावली माला पहनाए, हरावली माला पहनाए, आम की माटी दे चंदन, अभिनंदन है अभिवादन, स्वागत है पावन पावन, दिवस मिला मंगल पावन, दृश्य बड़ा है मन भावन। धन्य पंजाब की धरती सीती दादियां पाल रही, बाबा मम्मा की पालना का अमृत सब पर डाल रही, फरीदकोट पूरा सारा पंजाब संभाल रही, प्रेम दीदी संगीता दीदी, प्रेम दीदी संगीता दीदी, बरसा रही है सुख सावन, अभिनंदन है अभिवादन, स्वागत है पावन पावन, दिवस मिला मंगल पावन, दृश्य बड़ा है मन भावन। भूमि के क्या कहने ये स्वर्ग आश्रम कहलाता है, चारों धाम करने से ही पापा में मन खो जाता है, यहाँ पे आने भर से ही सहज योग लग जाता है, जोती जोई जगाती दीदी जोई जगाती, फुल किस तन है गद गद मन, अभिनंदन है अभिवादन, स्वागत है पावन पावन, दिवस मिला मंगल पावन, दृश्य बड़ा है मन भावन। वैराग्य दृष्टि का अंतिम पुरुषार्थ करना है, इसके लिए मन का मुखड़ा मोबाइल का मौन रखना है। 14 वर्ष वाली भर्ती 4 दिनों में करना है। शशि दीदी शिलु दीदी बांधे शशि दीदी शिलु दीदी बांधे, नजरों से रक्षा बंधन, अभिनंदन है अभिवादन, स्वागत है पावन पावन, दिवस मिला मंगल पावन, दृश्य बड़ा है मन भावन, अभिनंदन है अभिवादन, स्वागत है पावन पावन, अभिनंदन है अभिवादन, स्वागत है पावन पावन, दिवस मिला मंगल पावन, कृष बड़ा है मन भावन, अभिनंदन है अभिवादन, स्वागत है पावन पावन।